मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सारी दुनिया में, सारे संसार में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम ज्यूरिख में मिल नहीं पा रहे पहले की तरह, पर हम फिर भी खुदावंद का, प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम इस ऑनलाइन मीटिंग के जरिए मिल सकते हैं। और हमारे को जो वचन, ये खुदावंद का कलाम दिया गया है, ये हमारे लिए आत्मिक भोजन है, रूहानी खुराक है, और ये कभी भी हमारे लिए पूरा नहीं है, ये हमेशा बहुतायत से है, क्योंकि हम खुदावंद की मेज के आसपास उसके गिर्द बैठ सकते हैं। और इस पैंडेमिक के होते हुए भी, महामारी के होते हुए भी, हम खुदावंद के वचन को सुन सकते हैं, जो कि भजन संहिता जबूर 91 में लिखा है। इससे पहले कि भाई फ्रैंक हमारे सामने खुदावंद का कलाम लाएं, और मैं पौलुस रसूल की कुछ लिखी हुई कुछ आयतें आपके सामने पढ़ूंगा, जो पहले साउल के नाम में पाया जाता था और मसीहियों को सताता था, और जब वो दमिश्क पर अपनी राह पर जा रहा था, तब वो खुदावन से उसकी मुलाकात हुई, प्रभु से मुलाकात हुई, और प्रभु ने अनन्या को बोला कि ये मेरे लिए एक चुना हुआ बर्तन है। और प्रेरितों के काम और कोलोसियों से मैं पढ़ूंगा, कोलोसियों 2:1-15 तक मैं पढ़ूंगा, कोलोसियों 2:1-15। कुलोसियों 2:1-15 तक हम पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को, जो मसीह में है, दृढ़ता से देखकर प्रसन्न होता हूं। इसलिए जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें चलते भी रहो, उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में भी दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। चौकस रहो, खबरदार रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ के धोखे से अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, सारी महिमा सारी प्रशंसा खुदावन यीशु को मिले, प्रभु को मिले इन वचनों के लिए, इस कलाम के लिए। और अब हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे वफादार प्रभु यीशु मसीह खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के लिए, इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू हमको आज देता है। हमारे भाई को आशीष दे, भाई फ्रेंड को, क्योंकि आज जो हमको ये वचन और ये खुराक देने वाला है हमारे पास तो बहुत भोजन है, पर उसके होते हुए प्रभु हमारे दिलों को खोले और वो वचन जो हम आज सुनने जा रहे हैं, जो कलाम सुनने जा रहे हैं, ये हमारे जीवनों में बहुत आय से फल्ला है। और हम प्रभु और इस के लिए, प्रभु के इस प्रेम के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो आज भी हमारे इस साथ उस आत्मिक भोजन को बांटता है और देता है, उस आत्मिक खुराक को देता है। तेरा धन्यवाद हो। और हम चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, जिससे हमारी मुलाकात तुझसे हो जाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी प्रशंसा तारीफ करता हूं, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और अब भाई फ्रैंक और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावन यीशु मसीह में जो पाए जाते हैं, मैं भी आपको खुदावन यीशु मसीह के प्रशंसनीय और मुबारक नाम में आपको आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, और खुदावन की बहुत सारी बहुतायत से आशीषें आपके सामने आए, आपके पास आए। ये मेरी दुआ है कि हम खुदावन के पाक कलाम को, पवित्र वचन को सुन सकते हैं। और जो भाई कैलो ने पढ़ा, और ये देखिए, इसके बारे में हम बाद में कुछ समय के लिए देखेंगे। पहले बहुत सारे अभिनंदन, बहुत सारी ग्रीटिंग्स आई ज्यूरिख से, स्विट्जरलैंड से आई, और भाई बहनों की तरफ से भी आई, और सभी लोगों की ओर से आई, और अलग अलग जुबानों की ओर से आई, और सारे यूरोप से। और इसी प्रकार से, इसी तरह से मैं भी अपने अभिनंदन और ग्रीटिंग्स और अपना सलाम कि ये बात सारी दुनिया सुन सके और इस बात का अनुभव कर सके और जिन्होंने ये अभिनंदन दिए उनके लिए बड़ा धन्यवादी हूं मैं के खुदावन की आशीषें उनके ऊपर उनके ऊपर पूर्णता से, संपूर्ण रूप से, पूरे कामिल तौर पर आ जाएं। और हम बहुत बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, बहुत होप में हैं, उम्मीद में हैं, और हम उन वादों के ऊपर टिके हुए हैं जो खुदावंद के कलाम में खुदावंद ने कि खुदावंद उस काम को जरूर कामिल करेगा, पूरा करेगा, संपूर्ण करेगा जो उसने अपने वचन में हमसे किए हैं। और अब हम आखिरी दौर में आ चुके हैं, इस समय के आखिरी दौर में आ चुके हैं, और हम बहुत निकट और करीब भी आ चुके हैं। केवल हमने ही इस बात को नहीं समझा जो कि सिर्फ बाइबल के विश्वासी होने के नाते, सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि दूसरों ने भी इस बात को अनुभव किया, इस बात को जाना कि ये अब ये जो चल रहा है ये इस प्रकार नहीं चलता रहेगा। ये लोगों दूसरों ने भी समझ लिया है। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से हम पहले इकट्ठे होते थे उस प्रकार से हम नहीं हो पा रहे, हमको दिख रहा है। पर हमको ये पता है कि खुदा का जो वचन है, जो वादे हैं, वो सारी दुनिया में खुदावन का जो वादा था कि जब दो और तीन मेरे नाम में इकट्ठे हो गए तो मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ, मैं उनके बीच में जरूर उनके दरमियान में हाजिर रहता हूँ। और अगर हम इसके बारे में सोचें कि इन जो ट्रांसमिशन है, ये जो ऑनलाइन जो प्रचार है कि प्रभु का वचन जो है हर एक घर में, हर एक कोठरी में, हर जगह जहां लोग रहते हैं वहां पर, उन सबों में ये खुदा का कलाम, ये सारे के सारे इस कलाम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इसमें अपना हक पा सकते हैं, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। ये कहीं बैठकर भी हम सुन सकते हैं, चाहे घर में हो, चाहे कार में हो, जहां पर भी हो हम इसके शरीक हो सकते हैं, हम इसमें मौजूद हो सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसलिए हम बड़े आभारी हैं, बड़े धन्यवादी हैं कि जो पुराने जो सर्मन्स हैं वो बार बार प्रचार किए जा रहे हैं ऑनलाइन, और मैं खुद उनको सुनता हूं, और मैं भाई ब्रनम के सर्मन्स को सुनता हूं बार बार, जो कि 1960 से के बाद से शुरू किए उन्होंने। और आपको पता है के खुदावन ने क्या कहा था और क्या बताया था। कि जो हमारे भाई विलियम ब्रैनम कि वो आखिरी संदेश को, आखिरी मैसेज को लेकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, क्योंकि वो उस आत्मिक भोजन को पहुंचाएंगे हमारे पास। और प्रभु ये आत्मिक भोजन हम तक पहुंचने देगा, और ये जो आत्मिक भोजन है, ये रूहानी खुराक जो है, ये बांटी जाएगी और बांटी जा रही है, और बार बार ये कहना जरूरी है कि जो पहला वादा किया गया था, जो खुदावन ने किया था, जो अब्राहम को दिया था खुदावन ने, कि तेरे अंदर, कि तुझ में जो हैं, जो तुझ में हैं, वो सारी संतानें, सारे वंश जो हैं, वो आशीष पाएंगे। और इसलिए अब ये खुदावंत का जो आज्ञा थी कि अब सारे संसार में जाओ, सारी दुनिया में जाओ और जो भाई ब्रनम ने बार बार कहा कि जो आखिरी संदेश है कि आखिरी संदेश जो है, आखिरी कलाम जो है, ये सारी संसार में व्यापित हो जाएगा, सारे संसार में फैल जाएगा। और ऐसा जरूरी हो गया, ऐसा जरूर है कि ऐसा हो गया, और हम देख रहे हैं कि ऐसा कामिल हुआ, संपूर्ण हुआ, और ऐसा हो गया। और सारे संसार के अलग अलग भाषाओं के लोग जो उन्होंने इस आखिरी संदेश को, इस आखिरी मैसेज को सुना और वो उन तक पहुंचाया गया, और जिससे कि हम सुने और उसका अनुभव कर पाए उसकी उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा। और मेरे पास एक छोटा संदेश है आज के लिए, सारे भाइयों के लिए जो प्रचार करते हैं, सारे 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 उन मिनिस्ट्रीज में जो प्रचार करते हैं, कि अगर ये हमेशा क्योंकि अगर सारी बातें एकदम क्लियर ना हो पाए, साफ ना हो आए, पर प्लीज अनुवाद के द्वारा किसी अनुवाद करके किसी गलत फहमी का प्रचार ना करें, प्लीज कृपा करके इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि किसी प्रकार से कोई डिवाइड करने वाली या बंटवारा करने वाली अनुवाद को या टीचिंग को प्रचार ना करें। हमें वही भाषा बोलनी चाहिए जो प्रभु ने हमारे को भाषा दी, जो वचन दिया, उसमें बदलाव ना हो पाए, उसके अनुवाद से उसमें कोई चेंज ना हो पाए, कोई तब्दीली ना हो पाए, इसका ध्यान रखें। बहुत सारे जो मसीह हैं जिनके बीच में हम आज बहुत बताओ से कह नहीं पाते कि बहुत सारे लोग कि आगे के लिए क्या होने वाला है, कई बारी लोग सोचते हैं कि जो विश्वासी बन जाते हैं खानदान और परिवार के लोग, उनके परिवार और उन जिनमें के बच्चे जो हैं, जिनके बच्चे जो हैं आज भी पुराने तौर तरीके से चल रहे हैं, के लिए देखिए बहुत सारे ऐसे मसीह पाए जाते हैं। और शादी के बारे में भी, विवाह के बारे में भी इस बारे में सोचने की जरूरत है, ये बातें गौर करने की हैं, क्योंकि आज हम खुदावंद के इस खालिस कलाम पर हैं जो भी पढ़ा गया, मेरे भाई केलो ने जो पढ़ा, क्योंकि अब हम उसके ऊपर गौर करेंगे। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जो हम विश्वासी हैं कि हम खुदावंद के वचन को पढ़ते जाएं, जैसे के खुदावंद हमसे शख्सी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहा है, वचन को ऐसे पढ़ें, कलाम को ऐसे पढ़ें। जो पौलुस के खत हैं हमने अभी देखा, जब आपने पढ़ा तो उसको आगे बढ़ाएं, आगे क्योंकि जो खत है वो व्यक्तिगत रूप से शख्सी तौर पे किसी को लिखा गया है। और पौलुस कहता है, और हम कह सकते हैं क्योंकि खुदा जो है वो उसने बाइबल के हर एक विषय को इस तरीके से उन खतों के अंदर कुरिन्थियों के सामने पहुंचाया, बताया। पहला कुरिन्थियों में 7 में लिखा है, शादी के बारे में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 में लिखा है कि हमारे सामने क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह और पुरुष और स्त्री, यानी के खाविंद और उसकी औरत दोनों की का जो रिश्ता है उसको बताया गया, और वो खुदावन यीशु और कलीसिया के रिश्ते को भी बताता है, और फिर प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में बताया गया। और जब मुझे सारे भेद भी पता चल जाएं, अगर सारा विश्वास भी मिल जाए, पर अगर मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम, खुदावन का प्रेम ना आ जाए, मोहब्बत ना आ जाए, तो बेकार है। 14 14 बाब में वो कहता है, फिर वो मिनिस्ट्रीज के बारे में बता रहा है, सेविकाओं के सेविकाई के बारे में बता रहा है, सेवाओं के बारे में बता रहा है, क्योंकि किस प्रकार से किस तरीके से हमारी मंडलियों में सेविकाई चलनी चाहिए सारा कुछ बताया गया है। क्या हमारे पास बाइबल नहीं है घरों में? क्या हम उसको पढ़ नहीं सकते? क्या हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, और क्या सुन नहीं सकते क्या बताया गया? और 15 अध्याय में कुरिन्थियों में बताया गया, प्रभु की वापसी के बारे में बताया गया, उसके बारे में क्या बताया गया कि क्या होगा, और एक अध्याय एक विषय से लेकर एक खत से दूसरे खत में ये बताया गया। हमको इसको पढ़ने की जरूरत है और उसका हमें जवाब समझने के बाद हम उसको समझें और उसका जवाब अपने आप से पूछें, क्योंकि खुदावंद हमको फजल देता है, अनुग्रह देता है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे जीवनों के अंदर प्रकट हो जाए, हमारी हमारी जिंदगियों में वो चीज कामिल हो जाए, जहूर में आ जाए, और हमारी मंडलियों की जो जिंदगी है, हमारे परिवारों में जो हमारी जिंदगी है, हमारी व्यक्तिगत जो हमारी जिंदगी है, ये आखिरी आखिरी समय का, ये बिल्कुल आखिरी के आखिरी का समय, जब हर चीज बहाल और वापस की जा चुकी है, रेस्टोर की जा चुकी है, केवल शिक्षा के द्वारा नहीं बल्कि कलीसिया में भी, परिवारों में भी और शादी में भी, इन हर चीज के अंदर हर चीज जो है वो बाइबल के अनुसार की जाए। देखिए, ये अंत समय है, इसको सुधारने की, इसको समझने की बहुत खास जरूरत है, क्योंकि उसने तो अपना नबी और अपना प्रॉफिट भेजा जिससे कि हमको अलर्ट कर दे, सावधान कर दे कि वचन क्या कह रहा है, और उसने परमेश्वर की, खुदावन की पूरी योजना को हमारे सामने प्रकट कर दिया, प्रचार कर दिया और बोल दिया। अब एक बात कहना चाहूंगा कि भाइयों को कहना चाहूंगा जो अफ्रीका में भाई पाए जाते हैं, जो कि शादियां जो हैं अफ्रीका के मुल्कों में बिल्कुल दूसरे तरीके से शादियों को वो मनाते हैं, शादियों की योजना बनाते हैं। प्लीज, हम आपको आपके हाल पे छोड़ते हैं, आप हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम एक दूसरे से शांति में रहें, हम एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में ना पड़ जाएं, पर हम सब के सब उस पैटर्न को, उस योजना को, उस तरीके को, उस खाके को पूरा करें और फॉलो करें जो खुदावन ने हमें दिया है। और अब मैं भाई बोक से बोलूंगा कि वो एक कि वचन को पढ़ें, और कोलोसियों की किताब, कोलोसियों से एक दो आयतें पढ़ें, कुछ आयतें पढ़ें, कोलोसियों 2:9-15 तक, कोलोसियों 2:9-15, कोलोसियों 2:9-15, मैं 9 से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और सारे अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, और यानी जहाज जो यानी मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे हो। उसने तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में थे। यहां हम रुकते हैं, यहां हम थोड़ा रुकते हैं, पहले ये देखते हैं। हमें पहले अपने पुरानी इंसानियत को, पुरानी पुराने मनुष्यत्व को, पुराने इंसान को हटाना है। और यहां पौलुस यही बता रहा है अपने खत के अंदर, क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, सलीब पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं नहीं जीता, मैं जिंदा नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हकीकत में अब इस बात को उस बपतिस्मे से जोड़ रहा है, क्योंकि जो अपने गुनाहों में, अपने पुराने जीवन में, और जिसने अपने पुराने इंसान को मार दिया यीशु मसीह में, और अब एक नया इंसान, नया मखलूक यीशु मसीह में, वो जो पुराना मर गया यीशु मसीह में, जो मर गया और वो दफनाया गया। और ये देखिए, ये कितना, ये देखिए मेरे दिल के ऊपर ये बात कितनी गहरी तरह से कायम है, और सांसारिक रूप से, कि जो मर जाते हैं केवल उन्हीं को दफनाया जाता है, जिंदों को नहीं दफनाया जाता। उनको हम दफनाते हैं, और हम इसी तरीके से बपतिस्मा में भी केवल उनको दफनाया जाता है पानी की कब्र में, जो अपनी पुरानी जिंदगी से, पुरानी इंसानियत से, पुरानी मखलूकात से, मनुष्यत्व से, पुरानी पर्सनैलिटी में मर चुके हैं। जो बपतिस्मा होता है ये एक, ये बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, जो अपने आप में, जो अपने मनुष्य अपने पुराने जीवन में मर चुके होते हैं वो बपतिस्मा लेते हैं। जिंदा आदमी बपतिस्मा नहीं ले सकता। हमें पुराने जीवन से मरना होता है, परमेश्वर की साबत सामर्थ, उसकी कुवत को हासिल करना होता है। हमारा जो उद्धार करता है उसके अंदर खुदाइयत पूरी तरीके से भरी हुई थी। खुदाइयत परमेश्वरत, यानी खुदाइयत पूरे तरीके से हमारे प्रभु यीशु में थी, जिससे कि हम इस बात का, इस बात को हम अपने अंदर इस्तेमाल कर सकें, जहूर में ला सकें, अनुभव कर सकें, पहचान सकें, और खुदावंद के लिए, और एक खुदावंद के लिए एक अच्छी जिंदगी हम। अब हम आगे पढ़ते हैं और 13वीं आयत पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, और उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और उसने सारे हमारे अपराधों को क्षमा किया, आमीन, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, आमीन, और क्रूस के द्वारा, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, यानी कि आवाज सुनाई दी, ललकार सुनाई दी, आमीन। यहां पर हम थोड़ा रुकते हैं। देखिए कितना अद्भुत सुसमाचार, कितना महान खुशमा, कितनी बड़ी योजना, कितना बड़ा संदेश उद्धार का। देखिए हर चीज लिखी जा चुकी है, हर चीज बताई जा चुकी है, हर चीज का वर्णन किया जा चुका है, कि जो कुछ किया जाएगा, जो आज भी हम करते हैं, जिसकी बारी पूरी पेशन गोई पहले से लिखी गई, बताई गई, क्या होना था, क्या हुआ, और क्रूस पर क्या हुआ? यह हाथ का लिखा हुआ जो लेख था और खुदावन ने जानबूझकर, उसने जानबूझकर ऐसा ऐसा हमारे सामने ये बताया, और उसने बताया कि हमारे सामने उसने उसके द्वारा हमको, उस लेख के द्वारा हमको बताया कि हम गुनाहगार थे, हमारे गुनाह का हमको इकरार करवाया और बताया कि अब उसके बाद, क्योंकि हम गुनाह में हैं, अब इसके बाद में उसने, जिसने वो लेख लिखा, उसने वो लेख अपने ऊपर ले लिया, तो हमारे खुदावन ने वो व्यवस्था, वो शरीयत जो थी, उसको अपने ऊपर ले लिया, जिसमें गुनाह जो थे वो रखे रहते थे, गुनाह धुलते नहीं थे, गुनाह जो थे वो धुलते नहीं थे, और उसके बाद में उसने उन गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने खून के और देखिए, उसने क्रूस के ऊपर उन गुनाहों को ले लिया। और मैं बड़ा खुदावन का धन्यवादी हूं कि भाई केला ने जो आज भाई के दिमाग में, भाई केला के दिमाग में ये बातें थी, उनके मन में बातें थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं रोमियो छ 3 और 4 को हम पढ़ते हैं। रोमियो 6:3-4, क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, अतः तुम मृत्यु के बपतिस्मा पाने से, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आमीन। प्रभु के नाम को आशीष और महिमा मिले। यहां पर पौलुस इस बात को बता रहा है, रोमियो के खत में इस बात को बता रहा है, हाँ, फिर बपतिस्मे के बारे में वो बता रहा है कि हम बपतिस्मे में प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए गाड़े जाते हैं। हम इस बात को हमेशा ध्यान से देखें, समझें कि बपतिस्मे के समय हमारे साथ क्या हुआ, और के खुदावन ने, प्रभु ने, उसने हमारे जीवन में वो सारी बातें कामिल करी हैं, संपूर्ण करी हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दी और वो मुआ मरा हमारे लिए, उसी प्रकार से जैसे उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, और उसी प्रकार से उसने हमारे गुनाह भी हमसे ले लिए, और अब हम उसके बाद स्वतंत्र हैं, और जैसे कि वो अथा में उतरा, अब हमको उस अथा गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं, उस हेल में जाने की जरूरत नहीं जहां प्रभु हमारे गुनाह लेकर चला गया, पर वो तो ऊपर आसमान में, स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया, पर हम निश्चय ही, बिल्कुल ही, हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में उठाए जाते हैं और उस महिमा में उठाए जाते हैं। देखिए, ये बात समझने की है, ये देखिए, ये वास्तविकता है, ये बिल्कुल वास्तविकता है, ये रियलिटी है, और प्रभु का आना जो है, ये बहुत, जो प्रभु में सो रहे हैं उनका पुनरुत्थान, और हमारे जिस्मों का, हमारी बॉडीज का बदल जाना, ये जो है, और ये प्रभु के लिए सारी चीजें बहुत, ये प्रभु ने तो ये सारे काम कर दिए हैं, उसके लिए, उसकी योजना में ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, पर जब समय आता है, जब समय परिपूर्ण होता है, तो ये हमारे जीवनों में ये बात कामिल होती है, और फुलफिल होती है, और हमारा इसके अंदर पूरा पूरा हिस्सा है, पूरा पूरा भाग है इसके अंदर। आप देखिए कितना संपूर्ण सुसमाचार है, देखिए कितनी महिमा प्रभु ने, कितनी प्रभु की महिमा हम पर प्रकट हुई, कितना अनुग्रह हमको मिला। और देखिए प्रभु ने क्या किया, उसने हमको ये कृपा दी और अनुग्रह दिया कि हम इस बात को समझ सकें कि हम किस घड़ी में रह रहे हैं, किस समय में हम रह रहे हैं, किन दौर से हम गुजर रहे हैं। हम देखिए और आगे पढ़ते जाएं, इफिसियों चार अध्याय, इफिसियों चार 22 और 22 से 24, इफिसियों चार 22 से 24, इफिसियों चार 22 से 24, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार था उतार डालो। अब देखिए ये सारी बातें जो हैं, ये हम सब के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारी तालीम के लिए, हमारे सुधार के लिए यहाँ बताई जा रही हैं। खुदावन ने बताया है कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ईमानदारी से कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, ये प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। और कोई बात जो खुदावंद के सामने नहीं ठहर सकती। और हम जानते हैं, हम अंदरूनी तौर पे, खास तौर पे जानते हैं, गहराई से जानते हैं। अब देखिए 23 आयत को पढ़ रहे हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और उस नए मनुष्यत्व को, यानी उस नई इंसानियत को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यह हमने इफिसियों 4 और 22 से 24 आयतें पढ़ी। क्या इसके बारे में प्रचार करने की जरूरत है? क्या ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ? अगर हम इस चीज को देखें कि एक, इसको एक खत समझें, जो ये खत हमको लिखा गया है, ऐसा जैसे कि ये खत, ये लेटर हमको व्यक्तिगत रूप से, इसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, ये तो खत जैसे लिखा गया हमारे लिए, हम इसको ऐसे पढ़ लें कि ये खत हमारे लिए, हमारे को संबोधित कर रहा है और हमें बता रहा है। और प्रभु ने कह दिया, जो प्रभु हमसे चाहता है वो उसने इस खत में लिखवा दिया, क्या हमारे जीवनों में क्या करना चाहता है उसने लिखवा दिया। और अब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 5 अध्याय, इब्रानियों 5 7 से 9, इब्रानियों 5 7 से 9, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहाकर कहा, उससे जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती करी और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। यहां देखिए हम रुकते हैं। हमारा जो प्रिय प्रभु है, मैं पूरी मन से कह रहा हूं कि केवल एक परमेश्वर, एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, और जो पुराने नियम का जो प्रभु है वही नए नियम का भी प्रभु है, क्योंकि एक ही प्रभु है। जो पुराने नियम का खुदा परमेश्वर है वही नए नियम का खुदा और परमेश्वर भी है, क्योंकि हमारा जो प्रिय परमेश्वर है, प्रभु जो है, जिसकी 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 स्वरूप में हमारा, हमारी और आदम की सृष्टि की गई, हम बनाए गए, वो हम शरीर में आए और इस शरीर में जब हम आए, और जब हम आगे और जब वो आगे गत्समनी के बाग में गया तो वहां पर वो रोया और वो दुखी हुआ। वो देखिए उसने पुकार पुकार कर आंसू बहाकर जो मृत्यु से बचा सकता था उससे प्रार्थना और विनती करी। देखिए यहां पर क्या हमारे जीवन में ये हो रहा है कि हम कि अब परमेश्वर का आत्मा खुदावन का रूह हमारे जीवनों में क्या काम कर रहा है कि हम अपनी प्रार्थनाएं रो रो कर और आंसू बहा बहा कर उससे कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि मैं बार बार कहूं हे प्रभु मैं तो रोना हूं, मैं आंसू बहा रहा हूं, केवल केवल मैं प्रार्थना ही नहीं कर रहा, लॉर्ड हे प्रभु ये मेरे जीवन में ये बात हो पाए, ये मेरे जीवन में ये बात उस प्रकार से पूरी हो जाए जिस प्रकार से तेरी इच्छा है हे प्रभु, जिस प्रकार से तूने मेरी योजना बनाई है प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि जब मेरे अंदर की ये ख्वाहिश जब मेरे अंदर मेरे ऊपर आ जाए, क्योंकि और अभी मुझे लगे कि अभी तक मैं वहां नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए, जहां तक प्रभु मुझे पहुंचाना चाहता है, तब ये जरूरी हो जाता है। तब आप देखिए हम अपनी अंतरात्मा में दुखी होकर ये प्रार्थना करते हैं। हम केवल प्रार्थना ही नहीं करते, हम तो करहा करा कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये कब तक मेरे साथ होगा, हे प्रभु कब तक मैं इस बात में चलता रहूं। और जब हमें इस बात का जवाब मिलता है, हमारा उद्धार करता इसका जवाब देता है, जिस प्रकार हमारे उद्धार करता ने और इस संसार में उन बातों को हमसे दूर किया और हमें बचाया और उसने जिस प्रकार से जिस हे मेरे भाई और हे मेरी बहन जिस प्रकार से हमारे प्रभु की यातनाएं और उसकी पुकार और उसका रोना और उसकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, उसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुनता है और सुन रहा है और सुनता है। तभी हम मैं और आप भी हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी जब हम रो रो कर ललका कर आंसू बहा कर प्रार्थना करते रहेंगे। और आगे देखिए पढ़ते हैं हम आठवीं आयत में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति से महायाजक का पद मिला। देखिए यहां पर हम रुकते हैं कि आज्ञाकारिता की बात बता रहा है। आज्ञाकारी बहुत जरूरी बात है, ये बहुत खास बात है, हुक्म मानने वाला, आज्ञाकारी बनना। और हमारे प्रभु ने भी मनुष्य रूप में आकर के आज्ञा माननी सीखी और दुख उठाकर उसने बहुत दुख उठाया। उसी प्रकार से हमको भी वो दुख उठाना बहुत जरूरी है हमारे लिए दुख उठाना। और प्रभु हमें बताता है, अब देखिए वो देखता है हमारे विश्वास को कि क्या हमारा विश्वास जो है वो हुक्म मानने से, यानी हुक्म मानने में और आज्ञाकारी बनने में क्या हमारा विश्वास प्रकट होता है, क्या हम अपने विश्वास को आज्ञाकारी बन करके आज्ञा मानने में प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। और आगे पढ़ता है कुलोशियों चार और 16। और जब ये पत्र यानी कि ये खत जब तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए और वो पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना और आर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौंपी गई उसे सावधानी के साथ पूरा करना। देखिए एक बारी फिर इस पे विचार करना है, ये जो खत जो है, ये जब तुम्हें ये खत पढ़ा जाए तो ये लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। मेरे भाइयों और बहनों, ये कितना बड़ा अनुग्रह है और कृपा है हमारा कि हम इन सारे खतों को पढ़ सकते हैं जो पतरस ने लिखा है। चाहे वो पतरस ने लिखा, चाहे याकूब ने लिखा, चाहे यहुन्ना ने लिखा, चाहे पौलुस ने लिखा, चाहे मलाकाई ने लिखा, चाहे यशाया ने लिखा, चाहे यर्मिया नबी ने, चाहे इज़किएल ने, किसने भी लिखा, इन्होंने जो लिखा ये सब ने लिखा। और देखिए इसके बाद इसका सारांश आया, निचोड़ आया। मेरे भाई और बहनों समझें, मुझे बताएं कि जो पुराना जो नियम है, वो पुराना नियम जो है उसका निचोड़ जो है, जो पहले लिखा गया था, जो बहुत लोगों के द्वारा लिखा गया था और हजारों साल पहले लिखा गया था, क्योंकि उसकी देखभाल किसने करी, उसकी निगरानी किसने, उस पैदाइश की किताब से, उत्पत्ति से लेके मलाकी की जो थी रहनुमाई किसने करी, किसने उसको संभाला, ये सारी चीजें लिखकर बताई गई। ये एक एक चीज का जिक्र वहां है कि कैसे हुआ, कब हुआ, हर एक का खुलासा, हर एक का वर्णन हम वहां पढ़ते हैं। और देखिए सारांश में क्या आया, और एक किताब के रूप में पहले तोरा था, उसके बाद 5 किताबें मूसा की थीं, उसके बाद पुराना नियम पूरा का पूरा। और मेरे भाई और बहनों, हम यहां समझें बताएं कि हमारे समय में हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन स्क्रिप्चर्स को लिखे हैं जो हमारे समय में बताए जाते हैं और जो हमारे बारे में बताए गए हैं कि हमारे जमाने में ये प्रीच किए गए हैं, प्रचार किए गए हैं। और कितनी बारी हमने ये बार बार इस बात को कहा, और कितनी बार हम इस बात को कहते हैं, मैं फिर कह सकता हूं, जब समय पूरा होता है, कमी कामिल होता है, तो कुछ ना कुछ होता है। जब खुदावन की पहली आमद हुई, जो उसको पढ़ना चाहता वो उसको पढ़ सकता है, चाहे वो मत्ती में पढ़े 3 बार, चाहे वो मरकुस 1 में पढ़े, चाहे लूका 1 में पढ़े, हर चीज जो पुराने नियम में, पुराने ऐहदनामे में लिखी थी, वो नए ऐहदनामे बिल्कुल तरतीब बार उसी तरीके से पूरी हुई और कामिल हुई, और हमारे जीवन में वो होती है। जो जो प्रभु ने प्रॉफेट यशाया नबी की मार्फत कहा, उसके द्वारा कहा, वो आज हमारे जीवनों में फिर भी कामिल होते हैं, नए नियम में भी वो होता है उसी प्रकार से। और देखिए जो पुराने और नए नियम में उन बातों के जहूर में आने का, प्रकट होने में, कितना पुराने और नियम में कितनी तरतीब है, कितना जोड़ है, कितनी कंटिन्यूटी है, कितना मेल है, कितनी अद्भुत बात है ये। और जो समय पूरा होता है, जो बड़े बड़े धार्मिक लोग जो हैं, ये सारे जो हैं, ये तब तक चलते रहे जब तक एक खुदावन की तरफ से एक बंदा नहीं भेजा गया, तब हम जानते हैं कि उनका आना उसको जकरिया नबी के बारे में बताया गया, और जिब्राइल फरिश्ते ने आकर के कहा कि क्या होने वाला है। और यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला जो नबी था वो किस लिए भेजा जाएगा और उसकी क्या सेविकाई होगी, इसका पहले से हमारे को ने अपने खुदा ने अपने कलाम में बिल्कुल साफ सफाई से बयान किया और बता दिया था, लिखवा दिया था। और जैसा मैं कहता हूं, जो जिसने इस बात को समझा और इस बात को ठीक से समझा कि कितनी सारी भविष्यवाणियां नबूतें पूरी हुई, और इस प्रकार से ये देख हम समझते हैं। मैं कितना खुश हूं कि कितनी सारी नबूतें जो पूरी हुई और खुदावन जो था वह अपने कलाम के ऊपर निगरानी रखे बैठा था वक्त के हिसाब से, और जब वक्त कामिल हुआ, वक्त पूरा हुआ, तो वो बातें पूरी हुई। और यहुन्ना जो था, जो नबी को था, उसको उसको ये नहीं पता था कि ये मसाया कौन होगा, और उसको बताया गया कि जिसके ऊपर तुम पाक रूह को उतरता हुआ और नाजिल होता वो देखो, यही वो मसीहा है जो गुनाह जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तभी उसने कहा था, अब मैंने इस चीज को देख लिया, इसलिए मैं अब इस चीज को कंफर्म करता हूं और इसका प्रचार करता हूं। ये था प्रभु के आने की पहली आमद के बारे में। और अब देखिए, अब हम इस वक्त में रह रहे हैं, इस समय में रह रहे हैं, जब हम इस समय में रह रहे हैं कि खुदावन की जो दूसरी आगमन है, उसकी जो दूसरी बार आना है, जो उसका आना है, हम उसका 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 जो आना है, जिसको लोग कहते हैं प्रभु का दूसरी आमद का वादा, और जो यहुन्ना 14 में उसने कहा कि अब मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जाकर एक जगह तैयार करूं, जिससे कि मैं वापस आकर तुमको ले जाऊं। और उसके बाद प्रभु ने कहा, उसने पुराने नए नियम में दोनों में कहा, उसने वादे किया और उसने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, ये कितना जरूरी है, इस बात कितना जरूरी है कि इस खुदावन की लैंग्वेज को समझना कितना जरूरी है। और जब बाइबल बताती है, जब प्रभु के दिन के बारे में बाइबल बताती है, तो वो समय जो कि उसका जो कुरुंथियों की किताब में लिखा, वहां जब बताया जा रहा है कि आज उद्धार का दिन है, आज अनुग्रह का दिन है, पर ये जो दिन है और ये दिन जो है, ये एक दिन खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला, उसके बाद प्रभु का दिन आने वाला है। और बाइबल बताती है, चाहे वो योएल नबी की किताब में हो, चाहे पौलुस की किताब में खत में हो, चाहे पतरस के द्वारा लिखा गया हो, क्योंकि प्रभु का जो दिन है वो, और वो चोर की तरह से आ जाएगा रात को, जैसे चोर आता है, और आसमान टल जाएंगे, और बड़ी भारी आवाज के साथ वो टल जाएंगे। और इससे पहले कि ये भयंकर दिन आवे, ये प्रकोप का दिन आए और ये न्याय का दिन आए, इससे पहले जो प्रभु ने अपने वादा दिया कि उसने कहा, मैं तुम्हारे सामने एलिया नदवी को भेजूंगा, और उस प्रभु का प्रकोपी दिन आने के पहले मैं एलिया को भेजूंगा। इसको आमीन कहिए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने ये प्रयोजन किया, उसने ये प्रोग्राम किया, उसने योजना दी। क्योंकि हमारे सामने खाली कुछ ऐसे ही नहीं लिखा, पर अब हमको बताया गया है, यहुन्ना को पता था कि वो कौन है, और उसने बताया, क्योंकि उसको ये पता था खुदावन ने उसको किस लिए भेजा। और हम यहां पर कोई हम अलग से भेद नहीं बना रहे, लोगों को कहने दें जो वो कहते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि वो जो लोगों के पीछे भागते हैं एक मनुष्य के पीछे, पर बात देखिए सच्चाई क्या है। आप किसकी पैरवी करते हैं, आप किसको कैथलिक किसको फॉलो करते हो, प्रोटेस्टेंट किसको फॉलो करते हो, और बैप्टिस्ट किसको फॉलो करते हो, किसको किसको मेथोडिस्ट फॉलो करते हैं, ये यहोवा विटनेस किसको फॉलो करते हैं, ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो लोग अलग अलग शिक्षाओं के लोगों को, मनुष्यों को फॉलो करते हैं, पर हम किसी विलियम ब्रैनम को फॉलो नहीं करते, एक मनुष्य की तरह फॉलो नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जिसने के अपने सारे के सारे वादे हमारे सामने किए, और उसने मत्ती 17 में उसने बोला 11वीं आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एलिया पहले आएगा और आ करके सारी चीजों को बहाल करेगा, सारी चीजों की वापसी करेगा, सारी चीजों का नियंत्रण सही करेगा। आदमी को फॉलो किए बगैर, मनुष्य को किए फॉलो किए बगैर कोई हम कोई नया धर्म, कोई नई शिक्षा, कोई नया डिनोमिनेशन नहीं बना रहे उसके द्वारा, पर हमको ये पता है क्योंकि जो इस उद्धार का जो आत्मिक योजना, जो जो नबूवत और टीचिंग वर्ड के द्वारा आया, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो, ये जो प्रचार का काम किया गया, जो उनकी सेवकाई के द्वारा किया वो जरूरी था शिक्षा के तौर पर, वो जो उनकी शिक्षा के द्वारा किया गया था, जो नबूवत के तौर पर और शिक्षा के तौर पर सिखाने के तौर पर था, पर ये हम सबको पता होना चाहिए कि आज हम इस चीज से बड़े खुश हैं और प्रसन्न हैं कि हम भी उनके उन सर्मन्स को सुन सकते हैं जो 60 के दशक से थे। फिर हम कहना चाहते हैं अलग अलग शिक्षाओं के द्वारा नहीं, जो कि ब्रदर ब्रैनम के बारे मैसेज के बारे में बोली जा रही है, पर केवल एक शिक्षा, केवल एक कलीसिया जो जिंदा खुदावन की जिंदा कलीसिया है उसके बारे में, जो नए नियम की कलीसिया है उसके बारे में, जो खुदावन के खून से बहाए हुए खून से द्वारा साफ की गई, सिद्ध करी गई और पाक करी गई। और मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप इस बात को जानें कि किस प्रकार से जो विश्वासी के अंदर जो भूख बढ़ती जा रही है, कि हमारा जो शख्सी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो खुदावन के साथ हो जाए, खुदावन के साथ मिल जाए, ये एक जिससे कि हमारी जो पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान वो मर जाए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, शुरू में कुलुशियों में पढ़ा और रोमियों में पढ़ा, और जैसा हमने पढ़ा कि कितने लोग आज इस चीज के लिए लालायित हैं, क्योंकि वो आत्मा में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें। कौन है इतने लोग, कौन है ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर मोहर लगाई जाए, इसके लिए कौन इतने ख्वाहिशमंद हैं, कौन इसके लिए ऐसी इच्छा रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रभु के नाम में आप सबसे, जो बुलाए हुए लोग हैं, जो के प्रभु की खालिस कलीसिया है, ब्राइड है, उसकी दुल्हन है, जो वचन के द्वारा बुलाई गई है, उनके बीच में कोई भी गलत शिक्षा, उनके बीच में कोई भी गलत शिक्षा या कोई गलत प्रचार ना आ जाए, और उनके द्वारा उनके अंदर कोई नई चीज ना आ जाए, एक नई शिक्षा ना आ जाए, पर केवल जो खुदावन के और मेमने के लहू में धोए गए और साफ किए जाए हैं, और पुरानी जो शिक्षाएं हैं उन सब में से जिनका सफाई हो चुकी, धुलाई हो चुकी, और वो जानता है क्योंकि किस प्रकार से, किस तरीके से, क्योंकि आदमी को जब गुसल दिया जाता, नहलाया जाता, तो किस प्रकार से वो पानी के अंदर जाता है, उसी प्रकार से हम भी जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम भी उसी प्रकार से गाड़े जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारी धुलाई होती है, और जब तक के उस आखिरी बात को हम पर लागू, वो आखिरी बात हम पर लागू ना हो जाए, जिससे कोई भी गलत शिक्षा ना आ जाए, गलत फहमी ना आ जाए, कोई नई शिक्षा ना आ जाए, बल्कि कोई भी बात ना हो जाए, केवल वही जो परमेश्वर का वचन खुदावन का कलाम कहता है। और जो इस चुने हुए लोगों के ग्रुप में पाए जाते हैं, झुंड में पाए जाते हैं, वही हैं वो जो के वचन की संतान हैं, जो के वादे की संतान, वादे किए हुए लोग हैं, और वही उस आत्मा को भी पाते हैं जो कि उस वादे की आत्मा है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको सुनते हैं, वो ही उस आत्मा को पाते हैं। और फिर प्रभु का आत्मा जो है, और तब वो सफाई उनके जीवन में आती जाती है, सफाई से सफाई उनको मिलती जाती है। इसका ये मतलब है, मैं कहना चाहता हूं, जो खुदावन की योजना में जो है, खुदावन की जो योजना है, वो इस अनुग्रह के समय में बिल्कुल अंत में है और अंतिम समय में है। और देखिए, हर एक मूर्ति पूजा, हर एक गलत शिक्षा, इन सब को अलग करना है और अपने आप को हमने संयम में रहना है और बिल्कुल सिधाई से, नम्रता से प्रभु में बने रहना और प्रभु में ही चलते रहना है और उसके वचन में पाए जाना है। मैं बताना चाहता हूं, ये देखिए इसके बारे में क्या है और इस बारे में अब सुनिए कि क्या कहना चाहता हूं मैं आज आपसे, क्योंकि जो वचन आज पढ़ा गया, जो हमने सुना, और देखिए उसके बारे में हमने देखा, जो हमने देखा, जो प्रभु का है, जो प्रभु से जन्मा है, जो खुदावन से पैदा हुआ, वो नया इंसान है, नया मखलूक है, और जो मनुष्य यीशु में पाया जाता है, खुदावन में पाया जाता है, वो नया मखलूक, एक नया मनुष्य, नया जीवन उसमें आ जाता है, नई जिंदगी उसमें आ जाती है, और वो इस पुराने जीवन से निकलकर नए जीवन में प्रवेश करता है। और भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, जिसको हम अंत समय का मैसेज बोलते हैं, जैसे कि आप विश्वास करते हैं, क्योंकि के प्रभु ने जो 11 जून 1933 को जो प्रभु ने बोला, और वो नबी को उसने, नबी पर अवतरित होकर जो उसने बताया, क्योंकि खुदावन ने तो उसको बिना आलम से पेशतर उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया था इस समय के लिए, कि जब वो 17वें बंदे को बपतिस्मा दे रहा था, तो एक अलौकिक लाइट, एक अलौकिक रोशनी, सुपरनेचुरल रोशनी वहां प्रकट हुई। जब वो ओहायो रिवर में खड़ा हुआ, तब वहां पर वो आकाशवाणी हुई और कहा कि जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह की पहली आमद की सेवा करी, उसी प्रकार से तुमको एक संदेश दिया गया, एक मैसेज दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। ये वो बात है कि खुदावंद यूं फरमाता है, प्रभु का ये वचन है, और ये वचन मैंने इस खुदावंद के इस वचन को पिछले 55 साल से लेकर के ले जा करके प्रचार किया और सारे संसार में प्रचार किया, और प्रभु ने मुझे ऐसी आशीष दी, उसने लोगों के दिलों को खोला, उसने दरवाजों को खोला, उसने रास्तों को खोला, और मैं सब लोगों को आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित रहें, आप और प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक नाम में, जलाली नाम में, जो उसने हमको दिया, उसने अपना नाम दिया, उसने अनुग्रह दिया, और उसने हमें इस समय को पहचानने की कुव्वत दी, सामर्थ्य दी, आशीष दी, और हमारा हक, हमारा भाग उस चीज में हो जो प्रभु ने हमारे लिए किया, और जो नबी के जाने के बाद, जो प्रभु आज 1965 के बाद से हमारे साथ चल रहा है, प्रभु हमारे साथ जो कर रहा है प्रभु, और तब से प्रभु ने हम अपने इस वचन को संभालने की, फैलाने की, बताने की जो जिम्मेदारी ली कि उसका ये पवित्र वचन, पाक कलाम जो है, ये सारी दुनिया में, सारी दुनिया के कोने कोने में, सारी जुबानों में और भाषाओं में और देशों में प्रचार किया गया, फैलाया गया। और ये मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हमेशा विश्वास के साथ आज्ञा को मानना, हुक्म को मानना अपने पर्सनल जीवन में बहुत जरूरी है। हमारा जो विश्वासी जीवन में जीवन है उसमें प्रभु की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। यही कि वो प्रभु के पवित्र वचन को सीखें और उसको रिसीव करें और उसको ग्रहण करें। और जो प्रभु का जो काम है, वो जो प्रभु ने अपने काम को पूरा किया, कामिल किया क्रूस के ऊपर में, उसके भागी हो जाएं। और फिर हमको ये बताया गया इस आखिरी संदेश के द्वारा, जो हमको ये बताया गया कि जो कुछ बहाल किया गया और उसके बहाली करी गई, वो अपनी वापसी की अवस्था में दोबारा लाया गया। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमारी बहाली कर दी, हमें वापस उस अवस्था में पहुंचा दिया जहां से असलियत की, सच्चाई की। और देखिए हमारे को उस अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ा दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसने हमें पहुंचा दिया। अब हम खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, मैं अपने सारे दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो तूने मेरे लिए किया है प्रभु। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और सारे अपने भाइयों और बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हूँ, तेरे सारी भाषाओं और देशों के लोगों के लिए तेरे से प्रार्थना करता हूँ और सबके लिए, तेरे सब देशों के लिए तेरे से प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, तो इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन के लिए, इस प्रचार के लिए, सारे भाइयों के लिए जो कि इसके अंदर अपना भाग रखते हैं, जो अनुवाद करते हैं, जो जो आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, हे प्रभु मैं तुझसे कहता हूँ कि उन सबको आशीष दे, उनको बहुतायत से आशीष दे, अपने अनुग्रह से आशीष दे और अपने अपना जो उद्धार का कार्य है उसको, उसके अपने जो तेरा खून खरीदा हुआ झुंड है उनके जीवन में तू बहुतायत से पूरा कर, अपने आने के, अपनी महिमा में आने के दिन, वापसी के दिन तक तू उनको पूरा कर, तो उनको दे। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मारा ना था और प्रभु के आने का दिन बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द तू आ जा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, मारा ना था, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।